प्रायः इन्हीं इकहरी दृष्टियों से आचार्य शुक्ल के इतिहास को यथास्थान बिंदु माने तो पिछले 25 वर्षों के दौरान कामायनी जैसे अनुभव संकुल और संश्लिष्ट रचना की समीक्षा की गई है। इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं कि कामायनी को लेकर हिंदी के समीक्षक, पाठक और सामान्य जनता में कई प्रकार के विभ्रम फैले हुए हैं। यह एक प्रकट तथ्य है कि आचार्य शुक्ल की सहानुभूत छायावादी काव्य के साथ कम थी। इसलिए आश्चर्य इस बात पर नहीं होता कि शुक्ल जी छायावाद और उसकी श्रेष्ठ कृत कामायनी के साथ न्याय नहीं कर सके हैं, वरन इस बात पर होता है कि अपने पूर्वाग्रहों के बावजूद वे छायावादी कृतित्व का इतनी दूर तक विश्लेषण कर सके हैं। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने कामायनी के महत्व को समझा है और कहा है, यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी छायावाद की चित्र प्रधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बंधा गए हैं। पृष्ठ 602-605 पर महत्व का अनुभव करते हुए भी आचार्य शुक्ल कामायनी की आस्वादन प्रक्रिया को स्पष्ट और प्रशस्त नहीं कर सके हैं, और इसका एक प्रधान कारण यह है कि रहस्यवाद के संबंध में शुक्ल जी की अपनी एक दृढ़ धारणा थी जिससे कामायनी के रहस्यवाद का मेल नहीं खाता। इस एक विशेष समस्या को लेकर नंद दुलारी वाजपेयी ने आचार्य शुक्ल के विभ्रम का अच्छा स्पष्टीकरण किया है। शुक्ल जी की दृष्टि में रहस्यवाद बिना आध्यात्मिक सत्ता को केंद्र में रखे संभव नहीं हो सकता, पर नंदुलारी वाजपेयी ने दिखाया है कि नए छायावादी काव्य की यह विशेषता है कि वह यथार्थोन्मुख मानव रहस्य को केंद्र में रख कर चलता है। उन्हीं के शब्द हैं, किंतु शुक्ल जी इस यथार्थोन्मुख मानव रहस्य काव्य और उस आदर्शवादी आध्यात्म काव्य के मौलिक अंतर की ओर ध्यान नहीं देते। आदर्श और यथार्थ का संपूर्ण मनोविज्ञान ही एक दूसरे से पृथक हो गया है। जयशंकर प्रसाद पृष्ठ 72। विवेचन के इस बिंदु पर हमें कहना होगा कि छायावाद और विशेषतः प्रसाद तथा कामायनी की शक्ति और संभावना का जैसा क्षमतापूर्ण आख्यान वाजपेयी ने किया है, वैसा इस युग का कोई दूसरा आलोचक नहीं कर सका। छायावादी काव्य की रहस्य भावना को मध्ययुगीन कवियों की अध्यात्म परक रहस्य साधना से अलग करके दिखा सकना उनकी सूक्ष्म साहित्यिक परख का एक बड़ा प्रमाण है। इसी तरह मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद्र की अपेक्षा सरल रचना पद्धति को एक ओर रखकर उसकी तुलना में प्रसाद की रचना शक्ति का बढ़िया विश्लेषण उन्होंने किया है। पर जैसा मैंने पहले संकेत किया, रचना को समग्र रूप में अनुभावित करने की शक्ति इस युग की समीक्षा में विकसित न हो सकी। कामायनी की रचनात्मक दृष्टि को एक सीमा तक पकड़ने के बावजूद कृति के समूचे विधान का विश्लेषण वाजपेयी ने भी निहायत काव्यशास्त्रीय और चलते ढंग से किया है। उनके विवेचन में कामायनी का काव्यत्व उपशीर्षक के अंतर्गत जो चर्चा है वह अत्यंत संक्षिप्त और अपर्याप्त है। कामायनी का दार्शनिक निरूपण को उन्होंने 6 पृष्ठ दिए हैं, जबकि कामायनी का काव्यत्व एक ही पृष्ठ में विवेचित हो जाता है, जिसमें अधिकतर रूपक अन्योक की सैद्धांतिक चर्चा है। कामायनी की काव्य प्रक्रिया का विश्लेषण नहीं है। फिर वस्तु वर्णन और निरूपण के अंतर्गत यह मानते हुए भी कि प्रसाद जी वास्तविक अनुभूतशील कवि थे, वे रीतिवादी जानकार नहीं थे। वहीं पृष्ठ 111 वाजपेयी ने सारा विवेचन रस और अलंकार के रूढ़ माध्यम से किया है। इस तरह कामायनी की रचना दृष्टि का सही ढंग से उद्घाटन करते हुए भी वे उसकी काव्य क्षमता का और समीक्षक के लिए यही तो मूल विचारणीय विषय है विश्लेषण करने में गतिशील नहीं हो सके। प्रसाद जी द्वारा प्राचीन कथा वस्तुओं के उपयोग के संदर्भ में उनका कहना है, प्राचीन कथा वस्तुओं का ग्रहण मुख्यतः इस अभिप्राय से है कि हम उस समय की उन्नतशील और सर्वतोमुखी चेतना को देखें और उसमें जो कुछ लेने लायक है उसे लें। वहीं पृष्ठ 70 पर यह दृष्टि तो वस्तुतः प्रसाद के पहले ही संवेदनात्मक पीढ़ी महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त के युग की है। प्रसाद प्राचीन कथा वस्तुओं को इतिहास से लेकर उन्हें वर्तमान अनुभव का अंग बनाते हैं, वह रचना चाहे कामायनी हो या ध्रुव स्वामिनी। इस रूप में अतीत के उपयोग को लेकर प्रसाद की दृष्टि नई और अधिक सार्थक है। इसे नंदुलारे वाजपेयी स्पष्ट नहीं कर सके हैं। शुक्लोत्तर पीढ़ी के एक अन्य प्रमुख समीक्षक हजारी प्रसाद द्विवेदी का मन आदि और मध्यकालीन साहित्य के बाहर बहुत कम रमा है। छायावाद को लेकर वे आचार्य शुक्ल की स्थिति से आगे नहीं बढ़े। उनकी मान्यता है कामायनी में आरंभ का दबा हुआ सलज्ज भाव विभिन्न सर्गों में स्पष्ट और प्रौढ़ अभिव्यक्ति पाता है। यह क्रम सिद्ध करता है कि वे गंभीर अध्ययन चिंतन और मनन के माध्यम से अपने भीतर के सौंदर्य प्रेमी मनोभाव को रहस्यवादी कविता के आवरण में प्रकट कर सके हैं। हिंदी साहित्य पृष्ठ 474 नितांत अनुभूति का विषय रहस्यवाद यह कविता के आवरण के रूप में प्रयुक्त हुआ है और फिर कविता बनी रह सकी है तो यह न कवि के लिए शोभन है और न रहस्यवाद के लिए ही। कामायनी की एक आरंभिक समीक्षा में तो आचार्य द्विवेदी और भी अंगभीर हो गए हैं। उन्होंने लिखा है, एक प्रकार का दर्जी होता है जो शरीर के ऊबड़ खाबड़ अवयवों के नजदीक जाकर धैर्य पूर्वक परीक्षा करता है और प्रत्येक अंग में बैठने लायक सुंदर कुर्ता तैयार कर देता है, और एक दूसरे तरह का दर्जी होता है जो कम परिश्रम और ज्यादा कल्पना करके एक लंबा चौड़ा झूल तैयार कर देता है जो प्रत्येक आदमी को ढक सकता है। कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का है। उद्धृत प्रसाद और उनकी कविता विश्वंभर मानव पृष्ठ 229। इस टिप्पणी पर सिवाय इसके और क्या कहा जा सकता है कि वह कामायनी के बजाय स्वयं इस सम्मत के बारे में ही अधिक लागू होती है। मैं माने लेता हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी की जैसी चिंता की जानी चाहिए वैसी नहीं की। फिर नंद दुलारे वाजपेयी के साथ नगेंद्र का नाम छायावाद के प्रमुख समीक्षकों में लिया जाता है। नगेंद्र ने, और यह मैं विश्वंभर मानव के साक्ष्य पर कह रहा हूँ, पहले कहीं लिखा था कि कामायनी मनोविज्ञान की ट्रिटाइज है। वही पृष्ठ 233। बाद में उनकी धारणा इस कृत के बारे में कुछ बेहतर हुई और उन्होंने फिर बड़े मनोयोग के साथ कामायनी का विवेचन किया है, पर उनकी सारी दृष्टि शास्त्र से इतनी बंधी है कि उसके आगे वे रचना और उसके अनुभव को कुछ भी महत्व नहीं दे पाते। उनकी पुस्तक कामायनी के अध्ययन की समस्याएं में सारे अध्याय शास्त्रीय पक्षों को अलग अलग लेकर चलते हैं, रचना का समग्र विवेचन नहीं होता। यही कामायनी के अध्ययन की सबसे बड़ी समस्या है। पूरी पुस्तक में 5 अध्याय हैं। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, अध्ययन अध्यापन की समस्याएं, कामायनी और महाकाव्यत्व, कामायनी का अंगीरस, कामायनी में रूपक तत्व, कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि। नगेंद्र की कामायनी विषय इस अकेली पुस्तक के अध्याय शीर्षकों को पढ़कर कामायनी की ही पंक्तियां स्मरण हो आती हैं। यही त्रिपुर है देखा तुमने तीन बिंदु ज्योतिर्मय इतने, अपने केंद्र बने दुख सुख में भिन्न हुए हैं ये सब कितने, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। कामायनी पृष्ठ 272। यह अपने में सचमुच एक बहुत बड़ी विडंबना है कि समरसता जैसी जीवन दृष्टि का प्रतिपादन करने वाले कृति का ऐसी खंडित दृष्टि से अध्ययन किया जाए। आधुनिक समीक्षा प्रक्रिया में रचना के अर्थ तथा अनुभव को जीवंत और विकासशील बनाए रखने का प्रयत्न है। यह मैं पहले ही कह चुका हूँ, पर नगेंद्र कामायनी के अर्थ को पुराने काव्य शास्त्र के साथ साथ नए विराम चिन्हों से भी बांध देना चाहते हैं। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं पृष्ठ 6। इस माने में उनकी व्याख्या सबसे अधिक रूढ़िवादी है।